Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Manushya kaha hai. To aap kahenge to man to pashuon mein bhi होता है परंतु उनके मन में और मनुष्य के मन में थोड़ा अंतर है। क्या? जीव का मन जो है पंचकोशों से विकसित है। यहां पांचों कोश विकसित है और अन्य प्राणियों में कहीं चार कोश विकसित है, कहीं तीन कोश है, कहीं दो कोश है और कहीं केवल एक कोश मात्र ही है। मन तो वहां भी है परंतु विकसित नहीं, अविकसित है। इसलिए आप मनुष्यों में भी देखते हो कि जिनका मन विकसित नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो पत्थर आदमी है। क्या कहते हैं? या कहते ये तो पशु है, बिल्कुल कुछ भी अक्कल नहीं हो। इसका मतलब क्या? अक्कल नहीं का मतलब बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं का मतलब उसका अंतकरण मन विकसित नहीं है, ये स्पष्ट होता है। इसलिए इन पंचकोशों से विकसित होने के कारण ही यहां इस शरीर में जो मन है वो विकसित होने के कारण ही इस शरीर को उसने मनुष्य बनाया है। या आनंद का भी, आनंदमय कोष का भी यहां विकास है, इसलिए तो मनुष्य हंस सकता है। दूसरे प्राणी हंस सकते हैं क्या? नहीं। आनंद उत्सव कौन मना सकता है?
मनुष्य।
केवल मनुष्य ही मना सकता है, समझे ना? आनंद की प्राप्ति करना, आनंद अपने जीवन में लाना, ये केवल मनुष्य मात्र को ही ईश्वर ने ये कला प्रदान कर दी है या साधना दे दी है, जो भी समझो। तो मनुष्य ने क्या करना चाहिए? मनुष्य ने अपने मन का विकास करना चाहिए। मन का पूर्ण विकास बिना संकल्प के नाश से नहीं होता है। क्या? क्योंकि मन को संकीर्ण बनाने वाला, छोटा बनाने वाला हमारा संकल्प है और साथ साथ विकल्प है। संकल्प और विकल्प निर्माण होते हैं, इसलिए इन दोनों के कारण ये मन इतना संकीर्णता में चला है कि एक देह तक, एक नाम तक, एक रूप तक, एक गुण तक, एक धन तक, इतने में ही सीमा उसकी बढ़ जाती है। इसलिए संत ये कहते हैं कि साधना क्या है? साधना कोई दूसरी कोई साधना, मतलब नाक दबाना या योगासन करना या हाथ में माला जप करके लेकर के जपना, ये उपांग मात्र है, ये साधना नहीं है। वास्तविक तो साधना ये है कि आप अपने संकल्प को जितना महान बना सकते हो उतना बनाने का जो पुरुषार्थ है। देखो, पुरुषार्थ में और कर्म में अंतर है, समझे ना? कर्म पुरुषार्थ नहीं और पुरुषार्थ कर्म नहीं है। कर्म बाहर होता है और पुरुषार्थ अंदर होता है। कर्म में क्रिया प्रधानता होती है परंतु पुरुषार्थ में ज्ञान प्रधानता होती है। क्या? पुरुषार्थ में ज्ञान की प्रधानता होती है और परमार्थ में, साधना में पुरुषार्थ की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता नहीं है, न क्रिया की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और पुरुषार्थ के लिए हाथ पैर तानना जरूरी नहीं है, ना हाथ में माला लेकर के है पूर्व के तरफ मुख लेकर के बैठना जरूरी है। करते हैं तो उत्तम है, साधक वो आपके साधना में वो साधक कर्म है, उसका विरोध नहीं है, परंतु उतना ही करना साधना मानना गलत है, क्योंकि उतना ही करने से आज तक कितने साल से कोई पूजा पाठ करता है, जप करता है, तप करता है, क्या क्या करता है, परंतु वो बाहर भिखारी में कभी ईश्वर का रूप देख नहीं सकता है। हाँ, गरीब को देख करके घृणा करता है और बड़े को देख करके सम्मान करता है, इसका मतलब राग द्वेष गया। तो साधना की सफलता किसमें है? माला जपने में साधना है, सार्थकता है, या तुम अपने संकल्प को महान बनाने में साधना है? मैं इसका विरोधी नहीं हूं, परंतु सपोर्टर भी नहीं हूं। इतने में ही रहना तुम्हारी साधना कुंठित हो जाएगी और तुम संकीर्ण बनकर के अभिमानी बनोगे, और ये हमने देखा है, अनुभव किया है, समझे ना। कुछ कुछ वेदांती भी ऐसे ही पाखंडी होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, अभी ईश्वर के मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, ब्रह्म तो हम ही है, मूर्ख है। मैं इनको क्या कहता हूं? मूर्ख कहता हूं, वेदांत तो समझा नहीं, अपने को ब्रह्म मान रहा है, मूर्ति को क्या मान रहा है, ये संकीर्णता का फल है। इसको साधना नहीं कहा जाता है, ध्यान रखो। मैंने आपको याद होगा, बहुत साल पहले मैंने वेदांत जीवन की साधना पर यहां 8 दिन या 9 दिन प्रवचन किया था, और उसमें साधना के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक मैंने बताया था। साधना कुछ नहीं है, केवल आपने संकल्प को इतना बनाओ, इतना बनाओ, इतना बनाओ। इसी संकल्प की बात तो वेद श्रुति या महावाक्य के द्वारा कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या है? इसको ज्ञान भी कहते हैं, है ना? क्यों ज्ञान कहते हैं? क्योंकि इस संकल्प में ज्ञान निहित है। तो आपने को कण कण में, हमने अपने को देखने का अभ्यास जो कर लेता है वो ईश्वर रूप माना जाता है, ध्यान रखो। क्या वो ईश्वर ही है? ईश्वर रूप नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर क्या करता है? सर्वस्य जाम हृदय सन्निविष्ट भगवान क्यों कह रहे हैं? या एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, इसका मतलब है हमारी देह पर दृष्टि, आत्मा पर दृष्टि नहीं है। ये संकल्प व्यापक कब होगा? जब तुम अपने आत्मा को जानोगे और आत्मा में स्थिर हो जाओगे, आत्मस्थिति को प्राप्त हो जाओगे, तो तुम अपने आप ही तुम व्यापक बनाओगे, तो तुम्हारा संकल्प भी व्यापक होगा। अब व्यापक संकल्प करने वाला जो है वो ईश्वर ही होता है, है ब्रह्मा, परंतु ईश्वर रूप बन जाता है। तो संत इस कोटि में जब पहुंच जाते हैं तब वैकुंठवासी कहा जाता है। ईश्वर ईश्वर का ही वैकुंठ में वास होता है, वो निरीक्ष देश है, निष्काम देश है, इसलिए निष्काम ईश्वर को ही कहा जाता है, आत्मा को ही निष्काम कहा जाता है। तो आत्मस्थित होना यही वैकुंठ की स्थिति है, और इस स्थिति से आत्मस्थ होने पर भी जब देहस्थ बन जाता है, अवतरतीति अवतारः, अवतरति का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे आता है, उसका नाम है अवतार। जो वैकुंठ से अर्थात आत्मलोक से जो देहलोक में आ जाता है, या जीवलोक में आ जाता है, क्योंकि आत्मा को जीव तो तभी कहा जाता है जब देह की उपाधि लगती है। देह की उपाधि नहीं लगी तो जीव है क्या? अविद्या की उपाधि, अविद्या ही देह है, ध्यान रखो। इसलिए तो कारण देह माना है क्या? नहीं है। कारण देह क्या है? अविद्या ही है। इस अविद्या की उपाधि लग जाती है, तभी तो इस उपाधि को लेकर के ही तो आत्मा को या ईश्वर को जीव कहा जाता है। और इस स्थिति में आया, जब ईश्वर जब देह स्थिति में आता है प्रजा के रूप में, अर्थात प्रजा का मतलब ही होता जीव, अब अपने को अभिव्यक्त किया ईश्वर ने, जीव के रूप में अपने को अभिव्यक्त किया है, तो ऐसी जब अभिव्यक्ति होती है, इस अभिव्यक्ति का नाम ही प्रागट्य कहा जाता है या अवतार कहा जाता है। तो संत प्रगट होते हैं कहते हैं, या अवतार होते हैं, ईश्वर के ही रूप होते हैं। देवते संत निमित्त क्या प्रतिमा, ईश्वर ही संत के रूप में आ जाते हैं। किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं, देखो एक तुकाराम का वाक्य है, अरभ काचे साठी पंते हाथी धरली पाटी, तैसे संत जगी क्रिया करुणी दाविती अंगी। देखो हमारे परमात्मा का आचरण, ज्ञानाचरण, शास्त्राचरण, धर्माचरण, ये कौन सिखाएगा तुम्हें? ईश्वर सिखाएगा? नहीं, ईश्वर ही जब मनुष्य रूप में आता है, संत रूप में आ जाता है, जैसा एक छोटा सा बालक, उस बालक को ज्ञान प्रदान करना है, उस ज्ञान प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको भी हाथ में स्लेट लेना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं? उसको भी हाथ में स्लेट लेना पड़ता है, हाथ पकड़ करके उसको अ आ या ए बी रेखाएं खींच खींच करके उसको सिखाया जाता है। किस लिए वो कर रहा है? उस बच्चे को सज्ञानी बनाने के लिए, उसको अपना ज्ञान अंदर जो है, उस अंदर के ही ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसा एक मास्टर को, टीचर को ये करना पड़ता है क्रिया, उसी प्रकार से संत भी, तैसे संत जगी क्रिया करुणी दाविती अंगी, उस ज्ञान का आचरण करके स्वयं दिखाते हैं, धर्म का आचरण करके स्वयं दिखाते हैं, भक्त का आचरण करके स्वयं दिखाते हैं कि किस प्रकार से रहना है इस संसार के अंदर, और किस प्रकार से कर्म करना है, किस प्रकार से धर्म करना है, किस प्रकार से उपासना, आराधना, प्रार्थना करना है, किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करना है। यदि संत नहीं होते तो तुम्हें किसी को ईश्वर का बोध भी नहीं होता, और ईश्वर का बोध नहीं होता तो क्या तुम अपना ज्ञान कर सकते थे? हा? कर सकते थे? नहीं, फिर तो हमारा जीवन पत्थरमय हो जाता है या पशुमय हो जाता है। अब पूज्य महाराज श्री के विषय में तो कहना ही क्या, हमने सबसे पहले महाराज जी का दर्शन मेरे ख्याल से 74 या 73 में किया था, परमार्थ निकेतन में हम पढ़ते थे ऋषिकेश में। उस समय धर्मानंद जी महाराज थे, वाग्देवानंद जी महाराज थे, और सदानंद जी महाराज के पहले नहीं, आसंगानंद जी तो हमारे सुखदेवानंद जी के बाद जो दूसरे मंडलेश्वर थे, मैं भूल गया उनका, भजनानंद जी महाराज, हाँ भजनानंद जी महाराज मंडलेश्वर थे, सदानंद जी महाराज तो बाद बने। तब महाराज जी का मैंने परमार्थ निकेतन में पहला दर्शन किया था, उसके बाद वृंदावन में भी एक दो बार किया और बंबई में भी कई बार, पर सत्संग करने का मौका मेरे को कम मिला। हाँ, एक दो बार मिला, प्रेम कुटी में महाराज जी का प्रवचन चल रहा था सन 80 में, तब एक बार दो तीन दिन मैं आया था वहां। मैं भी आनंद निवास में कथा करता था डी रोड पर, और वहां से उसके बाद वहां जाकर के महाराज जी का सुनता था थोड़ा। परंतु वास्तविक महाराज जी का जीवन जो है, तो ईश्वर विभूति जिसको कहते हैं, ऐसा भगवान ने 10वें अध्याय में अनेक प्रकार की अपनी विभूतियां बताई है। विभूति का अर्थ ही होता है विशेष प्रकार से होना। क्या ईश्वर ही विशेष रूप से बन जाता है? महाराज जी के अंदर हमने ये देखा था, धर्म मूर्ति तो थी ही, इसमें तो किसी प्रकार का संदेह नहीं, और उनकी फकड़ाई को भी हमने देखा है, राम सुखदास जी की फकड़ाई और अखंडानंद जी महाराज की फकड़ाई, और एक मस्ताराम बाबा थे। वास्तविक उस समय हमारा इतना बहुत अच्छा था कि बहुत अच्छे अच्छे संतों के दर्शन हुए और संगति भी हुई, और वही छाप हमारे जीवन पर भी पड़ी है। महाराज जी कर्म मूर्ति भी थे, कर्म का जब प्रतिपादन करते थे तो लगता था कि महाराज जी पक्के कर्मकांडी हैं। क्या कर्म का जब इतने गहराई से विश्लेषण करते थे तो लगता था कि महाराज जी पक्के कर्मकांडी हैं। जब धर्म का चिंतन करते थे और धर्म का वर्णन करते थे तो लगते थे कि महाराज जी पक्के धार्मिक हैं। ऐसा नहीं, योग की भी महाराज जी ने कई बार कई पुस्तकों में बड़ी गहराई से विश्लेषण किया है। योग साधना भी महाराज जी की थी, परंतु ये अष्टांग योग साधना कम थी, ज्ञान योग की साधना, ध्यान योग की साधना अधिक मात्रा में थी। महाराज जी के जीवन में जब भक्ति की बात आती थी तो लगते थे कि महाराज जी से परम भक्त कोई नहीं है, क्योंकि प्रेम की मूर्ति भक्ति सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, ये जो कहा है परम प्रेम, देखो परम शब्द दिया है प्रेम के साथ, परम प्रेम जिसका नाम है उसी का नाम है भक्ति, और ये परम प्रेम ही भक्ति का रूप है बरका, और अमृत स्वरूपाच उसका स्वरूप है अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? ब्रह्म। भक्ति का स्वरूप है ब्रह्म, और भक्ति ही क्या है? प्रेम। और प्रेम क्या है? प्रेम हरि रूप, हरि रूप प्रेम जान। प्रेम में और हरि में कोई अंतर नहीं है। क्या प्रेम ही, प्रेम को ही विष्णु कहा गया है, प्रेम को ही हरि कहा गया है, प्रेम को ही हर कहा गया है, जो हरण करता है। देखो हरण कौन करने वाला है? प्रेम ही तो चित्त का हरण करता है, है ना? प्रेम नहीं हो तो आपका चित्त हरण होगा क्या? हा? किसी के तरफ आप आकर्षित होते हो तो ये आकर्षित करने वाला कौन है? क्या उसका देह है या उसकी कला है? नहीं। आज जिस कला में या जिस देह से प्रेम प्रसरित होता है वो प्रेम ही सभी को आकर्षित करता है, इसलिए प्रेम को ही कृष्ण भी कहा गया है, कर्षति इति कृष्ण हरति इति हर। और जो चित्त का भी हरण करे, चित्त हरिये लिए नंदाचानंद ने कहा है, भगवान कृष्ण किसका हरण करते? चीर हरण की कथाएं आप लोग सुनते हैं कि नहीं? ये चीर क्या है? ये चिर ही चित्त है, समझ? चित्त को ही चिर कहा गया है, चिरंतन। अर्थात ये जो चिंतन है ना, चिंतन जिससे चिंतन होता है, ये चिंतन ही ईश्वर क्या करता है, अपने तरफ उसके चिंतन को हरण कर लेता है, ईश्वर का चिंतन होने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा हमारे चित्त को, अर्थात वो संपूर्ण अंतकरण को जब हरण होता है, अर्थात परमात्मा में लग जाता है, तब अहम क्या होता है, बदलता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये एक ही वस्तु है, अलग अलग वस्तु नहीं है, समझना। जो अंतकरण चिंतन करने लगता है, देखो संसार आएगा तो चिंता बनेगी और परमात्मा आएगा तो चिंतन बनेगा। चाहे आप किसी वस्तु का करो, किसी रूप का करो, नाम का करो, गुण का करो, वस्तु का करो, पत्थर का करो, वृक्ष का करो, किसी का भी करो, परंतु शर्त इतनी है कि उसमें ईश्वर आना चाहिए, तो वो तुम्हारा चिंतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चिंतन बन जाएगा। और तुम हाथ में माला लेकर के ईश्वर के सामने बैठे हो और चिंतन कर रहे हो, परंतु उस चिंतन में क्या आ रहा है, दुकान आ रहा है, आज हजार हजार के नोट पड़े हैं, इसका कब इसका हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मैं तो जलाना पड़ेगा, हे ईश्वर हमारे पैसा क्या करो, वो आगे का आप लोग जानते हैं। तो आप ये बताओ कि ये क्या बनेगा, चिंता बनी कि चिंतन बन गया? कहने का तात्पर्य है कि जिसने अपने चिंतन को, चित्त को चिंतन बना दिया है, वही जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्गतः वानः यस्य स निर्वाणः, अर्थात जिसमें से, जिस जीव में से वान चला गया, ये वान ही तो तुम्हें घायल कर रहा है, वान ही तो बाण है। क्या निर्वाण का अर्थ होता है? जिसमें, जिसके जीवन में से वान चला गया, देहवान, रूपवान, गुणवान, धर्मवान, जातिवान आदि आदि। देखो वान कहा कि महाराज ये सब चला गया, परंतु ज्ञानवान रहता रहेगा तो, ज्ञानवान भी रह गया ना, चाहे भक्तिमान रहे चाहे ज्ञानवान रहे, मान भी रहे और मुक्त भी हो जाए, हो नहीं सकता है। मान का मतलब होता है परिच्छिन्नता, और वान का मतलब ही होता है दुखी। वान क्या करता है? दुख निर्माण करता है। क्या करता है? सुखी कौन होता है? प्रश्न ये है, हम दुखी क्यों? हम वान को पकड़ रखा है। कोई धनवान बन रहा है, कोई रूपवान बन रहा है, कोई विद्वान बन रहा है, क्या क्या हम बनते जा रहे हैं, है ना? और जितने हम बनते जाएंगे ना, उतने ही हम दुखी होते जाएंगे। ध्यान रखो, दुख का मूल बता रहा हूं। इसलिए जिसके जीवन में से वान निकल गया है, हटाओ इसको, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुम सुखी तभी हो सकते हो, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाड़ी हाथ, आपने घर को फूंक दो, चलो हमारे साथ, यदि तुम सुखी बनना चाहते हो तो सुखे और सुखी लोगों से ईर्ष्या करना बंद करो। हम दुखी, ये भी कारण है एक दुख का कि ये सुखी क्यों है ना? कोई धन को लेकर सुखी मान रहा है, कोई बिल्डिंग को, फ्लैट को लेकर सुखी मान रहा है, कोई फैक्ट्री को लेकर, कोई गाड़ी को लेकर, और उसको देख करके हम जल रहे हैं। अब इसको क्या कहा जाएगा, बुद्धिमानी कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा, अज्ञानता। कहने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थ किसके लिए करना है, जो तुम बन रहे हो ना वो छोड़ना चालू करो, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, साधना और कुछ नहीं है, समझे ना। जिस दिन तुम्हारे में से बनना बंद हो जाएगा, क्या उस दिन तुम्हारा वान समाप्त हो जाएगा, क्या बनना ही तो बिगड़ना है, जो बनता है वही तो बिगड़ता है ना, जो पेड़ पर चढ़ता है वही तो गिरता है भाई, जो पहला ही जमीन पर बैठा है, डर किसको है। जो हमारे गिरीश भाई यार कुर्सी से उतर करके नीचे बैठ गए, हमें बहुत अच्छा लगा, डर कुर्सी वाले को है या नीचे बैठने वाले को है, खर्ची वाले को थोड़ा सा भी हिल गए तो कहीं घबरा जाता है कि पैर कुर्सी का पैर तो न टूट जाए, जैसे नेता लोग घबराते हैं। इसलिए निश्चिंत होना है, शांत होना है, तृप्त होना है, पूर्ण होना है, सुखी होना है, आनंदित होना है, तो कुछ बनना बंद करो बस। जिस दिन तुम्हारा बनना बंद हो जाएगा उस दिन वास्तविक तुम उस महान आनंद का प्राप्त करोगे, अनुभव करोगे। और किसका अनुभव करोगे, दूसरे का नहीं। कोई वस्तु ब्रह्म नाम की कोई चिड़िया नहीं है, ना ईश्वर नाम की कोई चिड़िया है। कल्पना ने तुम्हें जीव बना दिया, इसलिए कल्पना ने ही तो ईश्वर भी बना दिया है, ब्रह्म को ईश्वर बना दिया है, और आत्मा को जीव बना दिया तुम्हारी कल्पना से। कोई ईश्वर नाम की चिड़िया नहीं है, और ना जीव नाम की कोई कीड़ा है, ये तुम्हारी कल्पना ने ही तुम जीव बन गए हो, तुम्हारी कल्पना से ही तुम ईश्वर को भी निर्माण कर रहे हो। जो कुछ है वो तुम हो, परंतु तुम्हें अपना बोध नहीं है। और ये बोध क्यों नहीं है, इसका कारण है तुम्हारा ये जो बीच में प्रतिबंधक बन रहा है, कुछ होनापन, मैं हूं ये भी समाप्त करो, अहम की भी समाप्ति होती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने अमृतानुभव में ज्ञान का भी खंडन कर दिया है, ज्ञान भी रहेगा तो ज्ञानवान बनता रहेगा, तो ज्ञानवान बनना कोई सुख का साधन नहीं है, समझे ना। उसको भी अज्ञानी से डर है, वो भी भयभीत है, वो निर्भय नहीं है, निर्भय नहीं है तो मुक्त कैसा, फिर प्रश्न होता है। और ये बताया महाराज सोमदत्त जी ने कि उड़िया महाराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, और शायद मेरे को पूछते तो मेरे मन में पहले ही आया था ये कि जीवन मुक्ति पहले या विधेय मुक्ति पहले। और ये पहले और बाद की बात ही नहीं है, क्या तुम अपने को बद्ध मान रहे इसलिए मुक्ति को बना कल्पना कर रहे हो मुक्ति की। मुक्त होता परी बड़े झाला बद्ध घेओनिया छंद माझे माझे, संत तुकाराम ने स्पष्ट कर दिया है। देखो इन वाक्यों को संत महाराष्ट्र के जो संत इतने उच्च कोटि के, और हमने बचपन में ही 10-12 साल की उम्र में घर में इन संतों के वाक्यों का जो अध्ययन किया, और हमारे अंतकरण में इतना बैठा हुआ है कि उसको हम चाहे तो निकाल नहीं सकते हैं। अरे हम हमेशा मुक्त ही है भाई, तो मुक्ति का प्रश्न ही कहां होता है। बस इसमें बाधक केवल एक ही है, उसको निकालने का प्रयास करो, यही हमारी आकांक्षा है। और महाराज जी के जीवन में मैंने देखा है, अनुभव किया महाराज जी का। वो देखो एक तो भगत लोग जो श्रद्धा से अनुभव करते वो दूसरी बात है, और एक संत ही जानती संताची महिमा, समझे ना। हम लोग जो महाराज जी को देखते थे, हम संत रूप से अनुभव करते थे। एक संतों का मिलन जो होता है ना, वो दूसरे रूप से होता है। भक्त का भगवान का जो मिलन होता है दूसरे रूप से होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी के अंदर जैसे भगवान कृष्ण को कंस के जब सभागार में वहां गए तो सब अलग अलग रूप से ही भगवान कृष्ण का अनुभव कर रहे थे। गोपिया, सखा, फिर जो शत्रु थे, जो पहलवान थे आदि आदि, सब अपने अपने ही रूप से भगवान कृष्ण को देख रहे थे। तो भगवान सर्व रूप में है, हर भगवान किसी भी रूप में, किसी भी रूप में नहीं। इसी प्रकार से संत को भी हम कई प्रकार से देख सकते हैं, कई प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। महाराज जी ज्ञानी भी थे, महाराज जी योगी भी थे, महाराज जी भक्त भी थे, महाराज जी धार्मिक धर्म मूर्ति भी थे, और महाराज जी कर्मकांडी भी थे, और महाराज जी कुछ भी नहीं थे। ये भी मैं बताता हूं। एक बार हम पावलोवा में रहते थे और एक बार अमरगिरी जी और मैं मिलने के लिए महाराज जी के पास विपुल में गया था। हमें पता लगा कि महाराज जी आए, तो हम गए दर्शन के लिए। तो महाराज जी ऐसे एक कोने पर ऐसा, तकिया पर ऐसा हाथ लगा करके
महाराज
ऐसे आई, फोटो है महाराज जी का, और उसी रूप में हमने देखा। परंतु हम गए, उनका दर्शन किया, बैठे, उनको कुछ भी पता नहीं है। पांच दस मिनट के बाद कोई भगत आया और उसने महाराज जी को कहा, महाराज जी ये अमरगिरी जी आए हैं पावलोवा से। आग खुली थी महाराज जी, आग बंद नहीं थी। तो उस स्थिति को क्या कहोगे आप? अब बताओ, आंख खुली है, कान खुले हैं, हमें लग रहा था कि देख रहे हैं परंतु देख नहीं रहे। कान खुले हैं, सुन रहे होंगे, सुन नहीं रहे। पश्चन श्रृणवन स्पृशन जिघ्रन स्नम सम स्वपन स्वसन, ये श्लोक मेरे को उस समय महाराज जी को देख करके मुझे याद आया। मैंने कहा यही तो ज्ञानी के लक्षण है। ज्ञानी के लक्षण क्या है? सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा है, देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ करते हुए, क्यों वो है ही नहीं ना, वाने नहीं ना, देवान ही नहीं है, जीवान भी नहीं, रूपवान भी नहीं, गुणवान भी नहीं, ज्ञानवान भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी जो स्थिति है उसी को ही तो ज्ञान कहा गया है और उसी को ही ब्रह्म कहा गया है। तो महाराज जी की ऐसी स्थिति का भी ऐसे दो चार लोगों के अंदर मैंने ये अनुभव किया। हम जो भी संतों के दर्शन करते थे तो अपने संत के दृष्टि से ही हम देखते हैं कि इनके अंदर संतत्व कितना है। हम और आजकल लोग क्या देखते हैं कि इनके पास क्या देखते हो आप, किस संतों के पीछे जाते हो?
घनत्व कितना है?
घनत्व बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शब्द बढ़िया दिया, घनत्व मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हम घनत्व को देखते हैं, देखना क्या चाहिए, वो दृष्टि नहीं हमारे अंदर आ रही। क्यों नहीं आ रही? बहुत कुछ विचार है और आप कल से बात कर लेंगे। हाँ, अभी आनंद कथामृत का या ये विमोचन हो रहा है, आप लोग देख लो। और देखो, ऐसे ग्रंथ का संग्रह जीवन में आ जाता है तो तुम पढ़ो या न पढ़ो, परंतु इस ऐसे ग्रंथ को देख करके भी तुम्हें आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ऐसे ग्रंथों को देख करके, और लक्ष्य क्या है तुम्हारा? पढ़ोगे तो आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु देखने से, दर्शन मात्र से भी आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद ही तो सभी जीवों का लक्ष्य है, समझ लेना। इसलिए इस उत्सव को आनंद उत्सव भी कहा जाता है। तो आज ये आनंद कथा अमृत, आनंद की जो कथा है, और यही क्या अमृत है? वास्तविक तो आनंद ही अमृत है और अमृत ही आनंद है, कोई भेद नहीं है, परंतु बीच में एक कथा आ गई है। क्या आ गई है? अमृत में और आनंद में कोई अंतर नहीं है, आनंद ही अमृत है, क्योंकि वो कभी मृत होता ही नहीं है, उसके अंदर अविद्या नहीं है। मृत क्या है वस्तु? मृत है अविद्या, अविद्या का नाम ही मृत्यु है, अविद्या ही मृत्यु हो। तो जिसके अंदर अविद्या नहीं है उसी को ही आनंद कहा जाता है और वही अमृत है। परंतु उस अमृत की, उस आनंद की जो कथा है, जो वाणी के द्वारा उसको अभिव्यक्त करना, उस आनंद को अभिव्यक्त करना, ये आनंद की अभिव्यक्ति है, अमृत की अभिव्यक्ति है, उसी को ही, इसलिए उसको कथा कहा। कथ्यतीति कथा, जो कथन किया जाता है उस आनंद का ही वर्णन विस्तार पूर्वक किया जाता है, उसी का नाम क्या है? कथामृत कहा जाता है। तो आज ये पुस्तक का भी विमोचन हो गया है। और जैसे गिरीश भाई ने कहा है, वो ऐसा वो हाथ का आता है नहीं, ऊपर का गणित पूर्ण करना है तो क्या करना पड़ता है? आप लोग जानते हैं गणित, गणितज्ञ लोग एक ऊपर का करते कि ऊपर का लेना है। तो हम तो ऐसे हमेशा के लिए हमने बोल दिया है, हमने कहा जब भी जरूरत पड़ेगी, हमें यदि शरीर के द्वारा थोड़ा सा लाचार हो गया तो बात दूसरी है, परंतु हमने ऐसे लाचारी में भी आता का यहां का सत्संग नहीं छोड़ा। आप लोगों को याद होगा सन 6 में मैं इतना बीमार हो गया था कि आईसीयू में था, और लोग कहते थे कि स्वामी जी का तो कोई भरोसा ही नहीं था। हमने तो कभी अपने को ऐसा समझा ही नहीं, और बीमार भी मैंने अपने को नहीं समझा, शरीर को देखा। और वास्तविक उसमें जो हमने वेदांत के चिंतन का जो वास्तविक फल है, उस स्थिति में मैंने अनुभव किया। और ऐसी स्थिति में भी जब मैं यहां, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि स्वामी जी आपको 3 महीने आप बिस्तर से उठना नहीं है और कुछ बोलना भी नहीं है आपको। हमने कहा डॉक्टर साहब मेरे को तो अगले महीने में कथा करना है प्रेमपुरी में। मेरा फरवरी और मार्च से 2 महीना था यहां सन 6 में, हाँ नहीं 7 में, 7 में, 6 में तो मैं भर्ती हो गया था, नहीं 6 की बात है, 6 की बात है, 7 की नहीं, 6 की बात है। अब मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे अगले महीने में, मतलब जनवरी में भर्ती हुआ था और फरवरी में हमने कहा मेरे को कथा करना, कहा कि स्वामी जी शक्य नहीं है, आप चले उठे नहीं सकते हैं। और उस समय बोल भी नहीं पाता था मैं, स्थित भोजन भी दूसरे लोग लड़के मेरे को कराते थे, हाथ भी नहीं उठ सकता था। और जब हम छुट्टी मिल गई फरवरी में और पार्ले में आए तो मंडलेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी आपको कहीं 6 महीने तक यहां से हिलना नहीं। हमने कहा स्वामी जी ये तो नहीं हो सकता है। हमने कहा मेरे को मार्च में तो कथा करने जाना ही जाना है मेरे को प्रेमपुरी में। कहा कि क्यों स्वामी जी दुराग्रह करते हैं? हमने कहा कि हम उस दुराग्रह के कारण तो सब छोड़ चुके हैं, सबको छोड़ा किसके लिए है। हमने कहा क्या होगा स्वामी जी, लास्ट तो बताइए कि आखिर क्या होगा, कथा करते करते मर जाएंगे, लास्ट तो मृत्यु है, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना, शरीर जाएगा ना, हम तो नहीं जाने वाले, परंतु शरीर जाएगा तो शरीर जाना ही जाना है, वो तो आज नहीं कल जाना ही है, परंतु कथा करते करते यदि हम जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा होगी बुरा होगा? हमने कहा मैं तो जाऊंगा। और वास्तविक मैं आया, स्वामी जी ने मना करने के बाद देखा कि स्वामी जी कहीं निकल गए, तो मैंने दूसरी की गाड़ी मंगाई, एक कर्नल था, उस कर्नल की गाड़ी गोरेगांव से मंगाई और उसको हमने कहा कि आप तुरंत फटाफट मेरे को उठाओ और ले चल प्रेमपुरी में, और 2 आदमी मुझे उठा करके लाए थे यहां। और कथा में भी शायद गिरीश भाई आते थे ना उस समय, गिरीश भाई आते थे, देखा 2 आदमी मेरे को उठा करके, चला भी नहीं जाता था, बराबर वाकर लेकर चलता था मैं उस समय। ये शक्ति किसकी है? क्या ये शरीर की शक्ति से होता है? इस शक्ति को पहचानो, तुम्हारे अंदर भी है वो शक्ति, उस शक्ति को जागृत करो, समझो, यही जीवन की साधना है। मैं बहुत बहुत आज सोमदत्त जी का, हमारे गिरीश भाई का, चिमन भाई का और आप लोगों का भी, सभी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसा मुझे अवसर दिया। तो इतना ही कह करके मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और बहुत टाइम भी आप लोगों से हमने ज्यादा लिया, इसलिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ये आराधन महोत्सव वृंदावन में 21 तारीख से 27 तारीख तक मनाया जाएगा, तिथि के अनुसार महाराज श्री का। ये भी एक सूचना है आप लोगों के
पास। हरि ओम।
महाराज श्री को हम क्या कितना धन्यवाद करें अध्यक्ष पद।
धन्यवाद नहीं करना भाई, धन्यवाद किसका किया जाता है।
ठीक है।
अच्छा ये लगा कि आज द्वैत में अद्वैत की बात हुई।
द्वैत में हूँ द्वैधी, द्वैत में
एक में एक एक, एक, एक अनुभव एक अनुभव की बात थी और एक अनुभूति की बात थी। और जीवन में हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने पचाया है और हमने जीवन उनसे सुनकर सजाया है, फर्क इतना ही है।
बहुत बहुत अच्छा।
तो ऐसे समय को देखते हुए और कल से पूज्य महाराज जी द्वारा अद्वैतानंद जी महाराज द्वारा प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय प्रवचन का हमें लाभ मिलेगा। हम फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर करे जगदीशपुरी जी महाराज जल्दी जल्द हमारे बीच में दो चार रोज में आ जाए। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।